खुदावन के जलाली नाम में आज की हजीर सुबह में उसका शुक्र हो कि उसने हमें ये दिन बख्शा के उसकी हजूरी में आए। वो खुदावन भला है और उसकी शफकत अबदी है। इससे पहले कि कलाम खुदा को शुरू करें, खुदावन का शुक्र हो कि वो अपने लोगों से मोहब्बत रखता है और हर तरह की कमियों कमजोरियों में हर वक्त अपने बाजू खोले खड़ा है और वो चाहता है कि उसके बेटियां और बेटे जो सोने की मानद हैं, वो चाहता है कि वो इस जमीन पर पाक जिंदगी बसर करें। वो चाहता है कि उनकी जिंदगी से उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। वो चाहता है कि हर एक उसका बेटा और बेटी जमीन पर उस फतह में जिंदगी बसर करे जिस दिन को आज और जिस दिन को आपने कल मनाया है, यानी कि ईदे क्यामत अल मसीह, यानी कि यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई। वो चाहता है बनी नू इंसान को हर एक खुशी देना। वो चाहता है कि वो शहजादों की तरह इस जमीन पर जिंदगी बसर करे। वो चाहता है कि हर एक उसका बेटा और बेटी इस जमीन पर उसके नाम को जलाल दे। वो चाहता है कि हमारे उठने और बैठने से उसके नाम को जलाल मिले और यही उसका मकसद है कि हम उसके नाम की तमजीद करें और यही उसका मकसद है इस दुनिया पर हर एक इंसान को पैदा करने का। और इस बड़े मकसद के लिए उसने इंसानों को पैदा किया और वो मकसद क्या है कि उसके नाम को जलाल मिले। फरिश्ते जो उसने मुकम्मल तौर पर पैदा किए हैं वो उसके नाम को उस तरह जलाल नहीं दे सकते जिस तरह आप और मैं और इस दुनिया में हर एक इंसान जब यीशु मसीह पर ईमान लाता है तो उसके नाम को जलाल दे सकता है। वो चाहता है कि हम जो अपनी पहली सी मोहब्बत भूल गए हैं उसकी तरफ वापस आएं। वो कहता है कि मैं तेरे कामों को तो जानता हूं। मेरे साथ देखें मुकाशवा उसका दो बाप। जब खुदावंद खुदा इफिसस की कलीसिया से बात करता है तो वो कहता है इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख जो अपने दाएं हाथ में सात सितारे लिए हुए है और सोने के सात चिरागों में फिरता है, वो ये फरमाता है सोने के उन सात चिरागों में हमारा खुदावंद यीशु मसीह फिरता है। वो इफिसस की कलीसिया को कहता है मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सबर तो जानता हूं और ये भी जानता हूं कि तू बदों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को रसूल कहते हैं उनको तूने अजमाकर झूठा पाया और तू सबर करता है और मेरे नाम की खातर मुसीबत उठाते उठाते थकता नहीं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदानों को उसकी जगह से हटा दूंगा। खुदावंद हमारे काम को, हमारी मुशक्कत को, हमारे सब्र को जानता है اور وہ جانتا ہے کہ ہم اس کے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے ہیں۔ لیکن اسے یہاں پر ایک شکایت ہے ہر ایک ایماندار سے کہ اس نے وہ پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ وہ پہلی سی محبت یہاں پر ظاہر کرتی ہے جیسے جب نیا جوڑا شادی کے بندھن میں بندھتا ہے تو وہ دلہا اپنی دلہن کے لیے جان نشاور کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اسی طرح ہم جو کلیسیا ہے، ہر ایک ایماندار اس کی دلہن ہے اور وہ اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اور اس نے ایسا ہی کیا جس دن، جو دن آپ نے منایا ہے۔ آپ جو اس کی دلہن ہے، اس نے آپ کے لیے اپنی جان دی ہے۔ لیکن وہ ایک شکوہ ہر ایک ایماندار سے رکھتا ہے جو اس کی مرضی کو رد کر کے اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو نے ہر ایک نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ اور محبت کو چھوڑنے کا مطلب اپنی مرضی کے طالب ہوئے۔ وہ اس باپ کی طرح ہر وقت ان راہوں کو دیکھتا رہتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کی طرف مڑیں۔ وہ ہر وقت اس کی آنکھوں میں بڑی امید ہے، اس مصرف بیٹے کی باپ کی طرح جو خدا باپ کو ظاہر کرتا ہے کہ ہاں، ایک دن میرا بیٹا، میری بیٹی میری طرف لوٹے گی۔ ہاں، ایک دن میرا بیٹا اور میری بیٹی اس محبت کو یاد کرے گی جو اس نے چھوڑ دی ہے۔ آج آپ اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی محبت ہے خدا کی ساتھ لوگوں کی۔ صرف عید قیامت المسیح یعنی کہ ایسٹر کے دن پر ہی خدا کی حضوری میں آنا لازم سمجھا، لیکن اس کے بعد کہا، ٹھیک ہے خدا، اب تمہیں کرسمس پر ملیں گے، اب تمہیں اگلے سال ملیں گے۔ یہ ہے وہ محبت جو ہر ایماندار جو مطلب پرستی میں زندگی گزارتا ہے، جب مطلب ہوا تو باپ باپ کہہ کر پکارا، اور وہ کوئی بھی شکایت یا شرط نہیں رکھتا۔ وہ اپنے بازو کھولتا اور کہتا ہے کہ میری بیٹی، میرے بیٹے، آ، میں تیرا مشتاق ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں، تو نے وہ کام نادانی کی حالت میں کیا، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ ہمیں اپنے کلیسیا کے لیے آنسوؤں کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ بہت سی بری باتوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کے لیے خداوند سے برکت چاہنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں افسیوں 2 اس کی 8 آیت سے 10 آیت تک۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ ایمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں، اور مسیح یسو میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا۔ اس سے پہلے کہ حصہ پر سیکھنا شروع کریں، خداوند کے نام کو جلال ملیں۔ چند لمحوں کے لیے میں دعا میں ٹھہرنا چاہتا ہوں، خاموشی میں۔ خدا باپ، تیرا کلام زندہ اور پاک ہے۔ آج جو کچھ بھی سچائی خداوند خدا تو نے تیار کی ہے ہماری روحوں کی غذا کے لیے، ہمیں سیر کر، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں، اور مسیح میں ان हम मसीह में उसकी कारागरी हैं। खुदा ने हमें मसीह खुदावन में पैदा किया। जब हम इसका मतलब यूनानी जुबान में देखते हैं तो पता चलता है कि हम उसमें बनाए गए हैं। सादा लफ्जों में पता चलता है कि हम खुदा का हिस्सा हैं। खुदा की जिंदगी का हिस्सा हम में पाया जाता है। वो पुरानी चीजें जाती रहीं, जैसे दूसरा करंथियों 5 बाप उसकी 17वीं आयत में पालूस उसूल इस सच को हम तक पहुंचाता है और कहता है, यूं लिखा है, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। हम जो मसीह यसू में खुदा की नई मखलूक हैं, खुदा ने हमें अपने जलाल के लिए नया बनाया है। अपने जलाल के लिए क्या किया है? नए तौर पर मखलूक किया है ताकि पुरानी चीजें, पुरानी इंसानियत हमारी जिंदगी में काम ना करे। और इसी के लिए उसने हमें बुलाया है ताकि उसके काम को सरंजाम दें। यहां पर जो अमाल के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, किसी अमाल या किसी काम के बायस, यहां पर पालूस रसूल सिखाता है कि निजात सिर्फ ईमान के बायस है, लेकिन हमें उसने नेक अमाल के वास्ते निजात दी है। उसने हमें इसीलिए बचाया है ताकि हम उन नेक अमाल को करें जिनके लिए उसने हमें बुलाया भी है। जब हम देखते हैं रूमियों उसका 8 बाप उसकी 29वीं आयत, तो वहां पर खुदा हमें इसी मकसद के लिए बुलाता है और यही हर एक बनी हुई इंसान का इस जमीन पर मकसद है। मेरे साथ देखें क्या लिखा है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले ही से मुकरर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। खुदा आपको इससे पहले के जमीन पर भेजे वो आपको जानता था, वो मुझे जानता था, वो हर एक बनी इंसान की इब्तिदा से आखिर तक जानता है। उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकरर किया, किसके लिए? ताकि उसके बेटे के हम शक्ल बने। उसके बेटे के हम शक्ल बनने से क्या मुराद है? उसकी मानद फरमा बरदारी की जिंदगी गुजारना, उसकी मानद हर रोज अपनी जिंदगी में कहना, बाप मेरी ताकत नहीं बल्कि तेरे जोर के बायस, तेरी मर्जी के बायस इस जमीन पर मेरा हर एक लम्हा हर एक दिन गुजरे। यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत में कभी भी अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करता तो निजात का काम बेमानी ठहरता, और इब्लीस यही कोशिश करता रहा। जब हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसके 4 बाप में, जब यीशु मसीह बियाबान में अजमाया गया तो इब्लीस यही कोशिश करता रहा कि यीशु मसीह अपनी उस कुदरत को इस्तेमाल करे जो उसमें है, अपनी उस कुदरत को। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी कुदरत को नहीं, अपने इरादे को नहीं, अपनी मर्जी को नहीं, बल्कि कलाम के वसीला से इस बात को जाहिर किया कि मेरी नहीं मेरे भेजने वाले की मर्जी पूरी हो। उसके बेटे के हम शक्ल बनने का मतलब भी यही है कि हम जो नए तौर पर नए मखलूक बने हैं उसके बेटे की मानद, यानी उसके बेटे की मानद, उसके हम शक्ल बनकर इस जमीन पर जिंदगी बसर करें। ये कैसे मुमकिन होगा? खुदा रूहुल की रहा रूहुल कुदस की कुदरत के बायस, کیونکہ یہ خدا روح القدس کی قدرت کے باعث ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ اور دیکھیں، فلپیوں اس کا دو باب اس کی 13ویں آیت کے مطابق۔ یہاں پر خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ فلپیوں دو باب اس کی 13ویں آیت کے مطابق یہاں پر یوں لکھا ہے، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ وہ آپ میں نیک ارادہ اور نیت اور اپنے نیک کام کو انجام دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے جب آپ اپنے آپ کو خاکساری کی حالت میں اس کے آگے پیش کریں گے۔ ہر روز ہمیں اپنے باپ کی مرضی کے طالب ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ ہر روز ہر ایک ایماندار کی زندگی کو تکتا ہے، اور اسی طرح آسمان سے فرشتے بھی نیچے زمین کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب ہم اپنے خداوند خدا کی قدرت کو استعمال کرتے ہیں تو آسمان پر فرشتے خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں، اور وہ اس بات کے مشتاق اور حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح بنی نوع انسان اپنی زندگی میں خدا باپ کی طاقت کو جو روح القدس کی ہے اسے استعمال کر رہا ہے۔ کیونکہ جب ہم اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہیں تو ہم ناکام ہوتے ہیں۔ اس لیے تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے جو پیدا کرتا ہے، جو قدرت رکھتا ہے، وہ خدا ہے۔ سب کام شکایت اور بغیر تکرار کے کیا کرو۔ ہمیں خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے ہر روز اس کی حضوری میں بڑے خاکسار بننے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر پالوس اصول بھی اسی بھید کو بیان کرتا ہے کہ اس نے ہمیں ان نیک اعمال کے لیے یسوع مسیح میں پیدا کیا ہے، یعنی کہ نئی مخلوق بنایا ہے تاکہ اس کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اور خدا ایمانداروں کی زندگی میں تین چیزوں کو استعمال کرتا ہے اوزار کے طور پر۔ پہلا، خدا کا کلام۔ میرے ساتھ دیکھیں پہلا تھسلونیکیوں اس کا دو باب اس کی 13ویں آیت۔ پہلا تھسلونیکیوں اس کا دو باب اس کی 13ویں آیت۔ اس واسطے ہم بھی بلا ناگا خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسے حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے ہو تاثیر بھی کرتا ہے۔ جو کلام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے یہ خدا کا کلام ہے۔ جب آپ اسے قبول کریں گے تو یہ بہت سا پھل آپ کی زندگی میں پیدا کرے گا۔ دوسری بات، دعا۔ دعا خدا کے ہاتھ کو، خدا کے ہاتھ کو جو استعمال کرتا ہے، خدا کا ہاتھ بڑھانے کے لیے دعا ایک بہت بڑا اوزار ہے۔ یہ بہت بڑا اوزار ہے جو ایمانداروں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ افسیوں 3:20 آئے سے 21ویں آئے تک یہاں پر پالوس اصول اس بڑے اوزار کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواستیں اور خیالوں سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے جب ہم اس کی حضوری میں दुआ करते हैं। हमें दुआ करने की जरूरत है, नहमिया नबी की उस तस्वीर को याद करने की जरूरत है कि उसका दिल कैसे दुख से टूटा हुआ था अपनी कौम की हालत को देखकर। वो रोता रहा, वो रोजे की हालत में ठहरा और उसकी दुआ ये थी कि खुदा उसके मुल्क को बहाल करे, उस टूटी हुई फसील को खुदा उसे बनाने के लिए इस्तेमाल करे। आज हमारी दुआ भी ऐसी होनी चाहिए हर एक ईमानदार के लिए जो रफाकत ईमानदारों की जिंदगी में टूटी हुई है खुदा बाप के साथ। खुदा बाप उस रफाकत को बहाल करने के लिए ईमानदारों को इस्तेमाल कर सकता है और हमारे ख्यालों और इरादों से कहीं ज्यादा खुदा काम करने की कुदरत और ताकत रखता है जब हम खुदावंद की हुजूरी में दुआ करते हैं। और तीसरी बात, खुदा दुख और मुसीबत को इस्तेमाल करता है। खुदा दुख और मुसीबत को इस्तेमाल करता है और वो दुख और मुसीबत हर एक बनी नू इंसान को खुदा की हजूरी में लाने का बायस बनती है। ये दुख और मुसीबत हमारी अपनी गलतियों, अपनी कमियों, अपने गलत फैसले और अपनी बुरी सलाहकारी के बायस होता है। मेरे साथ देखें पहला पत्रस उसका 4 बाप, यहां पर खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। 11वीं आयत में यूं लिखा है, अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुआफक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। जलाल और संतलत अब तक उसी की है, आमीन। यहां पर खुदावंद का बंदा पत्रस कहता है कि जो कोई भी काम करो किस ताकत के बायस करो, खुदा बाप की ताकत के बायस। और 12वीं आयत में लिखा है, ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये अनोखी बात है, अनोखी बात हम पर वाकया हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो, खुशी करो ताकि उसके जलाल के जहूर के वक्त नहायत खुश व खुरम हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि खुदा का रूह क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। हमें अपनी दुख और मुसीबत में दो चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। ये दुख हमारी अपनी बेवकूफी या गलत फैसले या गलत ख्वाहिश के बायस है। अगर इसके बायस है तो ये दुख हमें खुदा की हजूरी में लाएगा ताकि वो हमें हमारे दुखों से रुहाई दे। आज बहुत से लोग इस कलीसिया में, इस दुनिया में, दुनिया के हर एक मुल्क में बहुत से दुख, मुसीबत और आजमाइशों का सामना कर रही है अपने गलत फैसलों के बायस। लेकिन अगर हम मसीह की खातर दुख उठाते हैं तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम मुबारक हो। ये दुख हमें ना सिर्फ हौसला और तसल्ली देता है बल्कि हमारी जिंदगी से उस काम को जिस काम के लिए मसीह में खुदा ने हमें पैदा किया है उसके नाम को जलाल देता है। और इसीलिए पालूस रसूल इफिसियों 2 बाप उसकी 10वीं आयत में इस बात को कहता है कि हम उसकी कारागरी हैं मसीह यसू में, वो नई मखलूक हैं और हम सब जो उसकी नई मखलूक हैं होते हुए हमें 3 बातें अपनी जिंदगी में आज लेकर जाने की जरूरत है। खुदा का कलाम उसे जो जिंदा और पाक है और हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, वो आपके कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी होगा। दूसरी बात दुआ, आपकी बातचीत, आपका टाइम, जब दुआ करते हैं तो खुदा के साथ रफाकत होती है और आपकी दुआ, ईमानदार की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। हमारे सामने बहुत सी मिसालें हैं, जैसा कि एलिया नबी, उसने दुआ की बड़ी समझदारी के साथ, खुदा की मर्जी के साथ, और उसकी दुआ के बायस 3 बरस तक मीना बरसा। उसकी दुआ के बायस आसमान पर से आग नाजल हुई और हर तरह की जादूगरी की कुर्बानी जलकर भस्म हो गई। ईमानदार की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। और बाइबल मुकद्दस में, पुराने अहदनामा में लिखा है कि अगर मेरे लोग खाक सर बनकर दुआ करे तो मैं उनकी दुआ को सुन के, आसमान से सुन के उनके मुल्क को बहाल करूंगा, उनकी जिंदगियों को बहाल करूंगा। और तीसरी बात, मुसीबत, जो मुसीबत की आग आपके गिर्द, जो दुख और तकलीफ उठा रहे हैं, उसमें इस बात का खुदा को मौका ना दें कि तुमने अपने दुख और मुसीबत में पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। आज अपनी अपनी जिंदगी का हालत का जायजा लेने की जरूरत है कि हम इस जमीन पर क्यों जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्यों हम में जिंदगी की सांसें काम करती हैं, क्या हमारा मकसद है। खुदा ने कोई भी चीज बगैर मकसद के पैदा नहीं की। चंद लम्हों के लिए इसके बारे में सोचें, इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत है। खुदा ने आपको निजात दे दी है, खुदावंद का शुक्र है, और वो सिर्फ आपके ईमान के बायस है, यीशु मसीह पर ईमान लाने के बायस। लेकिन वो कहता कि हम मसीह यीशु में उसकी कारागरी हैं, वो नई मखलूक हैं, ताकि उसके नाम को जलाल दें। उसके नाम को जलाल देने के लिए अपनी नहीं, उसकी ताकत को इस्तेमाल करने की जरूरत है। खुदावंद के हजूर झुकेंगे और खुदावंद का शुक्र करेंगे। आसमानी बाप, तू शिकस्ता दिलों को तसल्ली देता है, तू कुचले हुओं को खुदावंद खुदा रहाई बख्शता है, तू खोए हुओं को अपने बीरखाना में लाता है, तुम गुमशुदा की तलाश करता है, और तू इसीलिए इस दुनिया में आया कि खोए हुओं को नजात और खोए हुओं को वो जिंदगी की राह बताए, जिसके बारे में तूने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं ही हूं। खुदा बाप, हमारी इस कलीसिया के तमाम लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि तेरा बदन, ताकि जो नई मखलूक है, तेरे नाम को जलाल देने वाली बने। हर तरह की जिद, हर तरह की हसद, हर तरह के गरूर, हर तरह के घमंड, हर तरह की कम इमली, हर तरह की कम इल्मी को हर तरह की उस पहली छोड़ देने वाली मोहब्बत में आने वाली हर तरह की कमजोरी को हर एक ईमानदार की जिंदगी में से दूर कर, ताकि उस बुलावे के मुताबिक चाल चलने वाले बने जिसके लिए तूने उन्हें बुलाया है। खुदा बाप, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ सब बहन भाइयों के लिए मांगता हूं।